है भूमि बंध्या हो रही, वृष जाति दिन भर घट रही, घी दूध दुर्लभ हो रहा, बल वीर की जड़ कट रही, गोवंश के उपकार की सब ओर आज पुकार है, तो भी यहाँ उसका निरंतर हो रहा संघार है। हाँ दूध पीकर भी हमारा पुष्ट होते हो नहीं, दधिघृत तथा तक्रादि से भी तुष्ट होते हो नहीं, तुम खून पीना चाहते हो तो यथेष्ट वही सही, नरयोनि हो तुम धन्य हो, तुम जो करो थोड़ा वही। क्या वश हमारा है भला, हम दीन हैं बलहीन हैं, मारो कि पालो कुछ करो, हम सदैव अधीन हैं। प्रभु के यहाँ से भी कदाचित आज हम असहाय हैं, इससे अधिक अब क्या कहें, हाँ हम तुम्हारी गाय हैं। जो हे मुसलमानों हमें कुर्बान करना धर्म है, तो देश की यो हानि करना क्या नहीं दुष्कर्म है। बीती अनेक शताब्दियां जिस देश में रहते तुम्हें, क्या लाज आएगी उसे अपना वतन कहते तुम्हें। जिस देश के वरवायु से सकुटुंब तुम हो जी रहे, मिष्ठान जिसका खा रहे, पीयूष सा जल पी रहे, जो अंत में तन को तुम्हारे ठौर देगा गोद में, कर्तव्य क्या तुमको नहीं रखना उसे आमोद में। हिंदू हमें जब पालते हैं धर्म अपना मान के, रक्षा करो तब तुम हमारी देश हित ही जान के। हिंदू तथा तुम सब चढ़े हो एक नौका पर यहाँ, जो एक का होगा अहित तो दूसरे का हित कहाँ। आज देश में गोवंश की दुर्दशा दर्शाने के लिए मैथिली शरण गुप्त जी की इस कविता से कारुणिक और कुछ हो ही नहीं सकता। राष्ट्रकवि को इन बेजुबानों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का कारण जानने की उत्कंठा है, लेकिन उससे भी अधिक ये चिंता है कि गायों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों, जबकि गाय इस देश का धर्मशास्त्र है, कृषि शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, नीति शास्त्र है, उद्योग शास्त्र है, समाज शास्त्र है, आरोग्य शास्त्र है, पर्यावरण शास्त्र है और अध्यात्म शास्त्र भी है। आज हम अपने कार्यक्रम में जिन्हें आमंत्रित कर रहे हैं वे हैं अखिलेश भिखारी जी, जो इंसानों के साथ ही बेजुबानों का दर्द भी बांट रहे हैं। आप दो दो जीवाश्रय चला रहे हैं। 17 दिसंबर को ही उनकी इस सेवा संघर्ष यात्रा के 5 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर चलिए दोस्तों अखिलेश जी से बात करते हैं और उनके इस सफर की बहुत सी बातों को उन्हीं से सुनते हैं। नमस्ते अखिलेश जी, चुभन पर आपका हार्दिक अभिनंदन है।
नमस्ते भावना जी, नमस्ते।
कैसे हैं सर आप?
बिल्कुल बढ़िया है।
और जिस कार्य में आप लगे हुए हैं, आपसे बात करने का हमारा बहुत मन था, चुभन के श्रोता भी आपको सुनना चाहेंगे,
ये हमारा सौभाग्य है।
और अखिलेश जी, ये कलयुग है और इंसान ही इंसान का दुश्मन बना हुआ है। आप लोग भी देखते हैं कि मृत शरीर पर खड़े होकर आज पत्रकारिता हो रही है, तो उसी दौर में आप इंसानों के साथ ही बेजुबानों का भी दर्द बांट रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं
जी।
दरअसल जो भारतीय संस्कृति का जीवन है,
बिल्कुल,
वो यहीं से शुरू होता है। हम गाय बछड़ों के बीच में पले बढ़े हैं
जी। जी,
हमारा घर उनके गोबर से लीपा जाता था तो पवित्र माना जाता था घर।
जी जी,
हम वहां से चल के आते हैं और जब सामने पड़ी गाय, उसका एक पैर टूट गया, वो पड़ी रंभा रही है, रो रही है, तो वो जो रिश्ते हैं
जी जी,
वो आदेशित करते हैं, किससे कितने प्रगाढ़ रिश्ते हैं इस पर निर्भर है
जी।
हमारे रिश्ते प्रगाढ़ हैं, इसके लिए हम ईश्वर के आभारी।
बहुत बड़ी बात आपने कह दी सर, और वही जैसा मैंने अभी कहा कि इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है आज, तो
जी
और ऐसे समय में वाकई ऐसे निरीह पशु पक्षियों के प्रति इतना प्रेम होना बहुत बहुत अच्छा।
दरअसल भावना जी, धर्म को लोगों ने सुविधा अनुसार व्याख्यायित कर लिया, परिभाषित कर लिया।
जी जी,
धर्म का मूल है, आप हमारे जो भी वेद मंत्र जो भी हमारे इतिहास में है,
जी जी,
उसमें धर्म की यही परिभाषाएं दी गई। बाबा तुलसी ने लिखा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
जी,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
जी जी,
तो और धर्म को हम आज नई दिशा में ले जाकर के उस नारे को भी विषाक्त कर देते हैं, जय श्री राम।
जी बिल्कुल ठीक कहा।
तो इस विषाक्तता के दौर में बहुत कठिन है यात्रा ये, लेकिन आप सबका संबल है, चल रही है।
जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप सर। और मैं बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि सिर्फ नारे लगा देने से या गाय दिख गई तो गोमाता कहकर निकल गए आगे से, उससे नहीं कुछ होगा, कुछ करना भी चाहिए हमको।
बिल्कुल,
और आप दो दो जीवाश्रय चला रहे हैं, दोनों अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं, तो इसके लिए आपने क्या क्या किया, इतना सब कुछ कैसे आप व्यवस्थित कर पाते हैं?
ये भावना जी, सिर्फ ईश्वर चलाता है इसको। चलाता क्यों है ये वो जाने। हमने जब शुरुआत की
जी,
तो कुछ पैसा हमारे पास था
जी,
वो हम चूंकि जब रिश्ते पारिवारिक होंगे तो पैसा आपकी जेब से निकल के अपने आप चला जाएगा।
जी जी,
निकलते रहे हम उनके आगे पीछे दौड़ते रहे, फिर दो से चार हुए, चार से छह हुए, फिर उनको रखने की जगह की जरूरत पड़ी तो पहले फुटपाथ पर रखा, फिर और संख्या बढ़ी तो किराए की जगह ली।
जी जी,
ये जो श्रम और श्रम के साथ जो लोगों का विश्वास जुड़ता गया, उसने यहां तक की यात्रा की है।
जी जी,
उस विश्वास के बल पर आज हमने अपनी निजी भूमि पर 8 विश्व भूमि पर निर्माण करा लिया है
जी,
और ये सब विश्वास की डोर से आया हुआ धन है।
बिल्कुल,
यही मार्ग है,
मतलब आप प्रयास करते रहे और आपको रास्ते मिलते गए।
हाँ, रास्ते मिलते गए, बिल्कुल
जी जी।
रास्तों में कहीं जूझना पड़ा, कहीं लड़ना पड़ा, कहीं स्वयं को मारना पड़ा, ये इस तरह की परिस्थितियां आती रही।
जी जी,
लेकिन निदान सबका होता रहा।
जी
जी,
तो यहीं पे मैं ये पूछना चाहूंगी अखिलेश जी आपसे कि आज हजारों की तादाद में गोरक्षक हैं और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो हैं वो भी गोरक्ष पीटते ही हैं, फिर भी जहां तक मैं मतलब मुझे जितना समझ में आती है ये चीजें, मुझे यही लगता है कि गोवंश की दशा शोचनी है, तो आप इससे सहमत हैं? और अगर है सहमत तो फिर इसके क्या कारण आपको लगते हैं?
देखिए, जब माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के राजा बने
जी जी,
तो मुझे लगता है कि सब सर्वाधिक प्रसन्न होने वालों में मेरा भी नाम शामिल था।
जी बिल्कुल,
एक मठ से चला व्यक्ति
जी जी
आगे आया है, तो निश्चित तौर पर, और उसके अंतस में गाय कहीं ना कहीं बसती है
जी।
क्योंकि जब वो कालिदास मार्ग पर शपथ लेने आए थे तो मीडिया वाले दिखा रहे थे कि ये गायों के लिए है, वो है, तो सबसे ज्यादा उत्साहित उल्लसित हमको लगता हम थे उस समय
जी जी।
धीरे धीरे, और ये हमारी यात्रा उस समय चल रही थी।
अच्छा,
हमने इस यात्रा को शुरू करने से पहले उन्नाव से 360 किलोमीटर दूर बाबा विश्वनाथ की पदयात्रा की
जी।
उस पदयात्रा से लौटने के बाद, दरअसल 1 जनवरी 2016 को हमारी मां का निधन हो गया।
मैं ये जानना चाहूंगी अखिलेश जी, इसी में मैं आपको मतलब बीच में पूछ रही हूँ आपसे कि आपकी ये यात्रा कब से आरंभ हुई, मतलब बचपन से ही आप कह रहे हैं कि आपको लगाव था इनके प्रति?
हाँ, ऐसा मन था बचपन के जो रिश्ते हैं
जी जी
वो ये हैं कि हमारी अम्मा गांव के कन्या विद्यालय में प्रधानाध्यापिका थी।
अच्छा।
और पिताजी कानपुर में जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक थे।
जी जी।
तो दोनों लोग अलग अलग रहते थे, हम अम्मा के पास रहते थे।
जी।
अम्मा के पास उस समय 16 गायें थी।
अच्छा।
और सवेरे उनका चारा पानी गोबर करकट करने के बाद हम लोगों का खाना बनाना, फिर विद्यालय जाना। उस व्यवहार में जो उनकी आत्मीयता थी
जी,
वो आत्मीयता हमारे पास भी आनुवंशिक रूप से उन्होंने प्रदान की हमको
जी।
फिर हम गांव में गैया चराने जाते थे, गांव से लौटे, गांव नुमा शहर उन्नाव में आना हुआ
जी जी।
यहां पर रहते तो अधिकांश गांव के लोग हैं, लेकिन शहरीकरण का लिबास उनके ऊपर ज्यादा पर चढ़ा है
जी।
तो ये यात्रा वहां से चलती हुई, अम्मा के दिए संस्कार, उनका दिया प्रेम, 1 जनवरी 2016 तक हम अम्मा की सेवा और इनकी सेवा आधी आधी करते रहे।
अच्छा।
1 जनवरी 2016 को जब अम्मा विदा हो गई तो 22 फरवरी 2016 को हम बाबा विश्वनाथ की पदयात्रा पर निकल गए। उसके बाद से ये यात्रा प्रगाढ़ होने लगी। नहीं, शुरुआत तो इसकी 2012 में मानी जा सकती है, जब हम राष्ट्रीय सहारा अखबार के यहाँ जिला संवाददाता हैं।
जी जी।
तो उससे एक जगह से हमको अनाधिकृत कमाई मिलने लगी। उसमें अनाधिकृत कमाई में जो टेम्पो अड्डे उड्डे होते हैं
जी जी,
इसमें अखबार का जिला संवाददाता होने के नाते हमारी हिस्सेदारी तय कर दी गई, तो उसमें 1,000-1,200 रुपए हमको रोज मिलने लगे।
अच्छा।
अब वो रुपए कभी जूता ले लिया, कभी किसी मित्र को दे दिया, फिर वो बढ़ने लगे
जी।
तो हमने सोचा कि अब कुछ, तो अपने कार्यालय के सामने हमने 2 चरहियों में भूसा और 2 में पानी निरंतर भंडारा शुरू करा दिया।
अच्छा।
तब उस पैसे की बेचैनी कुछ घटी।
अच्छा।
वहां से यात्रा शुरू हुई है।
जी जी।
फिर बढ़ती गई, फिर कहीं फटा मिला, टूटा मिला, उसको उठा लाए, इसको लाए, ये फिर जब इधर का ये धन बंद हुआ तो जो हमारे पास था उसको अपना, फिर लोग मिलते गए।
जी जी।
ये
नहीं तो जीवाश्रय की स्थापना आपने कब की?
जीवाश्रय हमने 17 दिसंबर 2016 को किराए की भूमि पर शुरू किया।
जी जी।
फिर ये जो नई शाखा है ये 17 दिसंबर 2020 को उद्घाटित की गई थी। ये यहाँ के सदर विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष के प्रयासों से संस्था को जमीन मिल गई थी, उस पर आप सबसे मांग मांग के निर्माण करा लिया है।
जी
जी।
जैसा कि अभी हम लोग पहले बात कर रहे थे अखिलेश जी की, मतलब सरकार हमारी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी गोरक्षपीठ से ही हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार को कैसे कदम उठाने चाहिए इस दिशा में, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो पा रहा और आप जैसे लोग कुछ ना होते हुए भी
सरकार की नीतियां गलत हैं। सरकार की मंशा भले गाय के प्रति अच्छी हो
जी जी,
लेकिन नीतियां नहीं ठीक।
बिल्कुल ठीक कहा आपने।
जैसे कि आपने 30 रुपए एक गाय के भोजन के लिए निर्धारित किया
जी,
अब आप बताइए इस समय 10 रुपए किलो भूसा है
जी जी,
30 रुपए में 1 किलो भूसा 3 किलो भूसा मिलेगा, और दिन भर में एक गोवंशी 4 किलो भूसा, 1.5-2 किलो दाना ना हो तो कम से कम 5 किलो हरा चारा
जी जी,
इतना उसका भोजन है
जी।
तो ये गोवंश को सुरक्षित करने की पहल कम, किसानों के आक्रोश से बचने की प्रक्रिया ज्यादा दिखती है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
जी।
क्योंकि जैसे जिनको इस क्षेत्र में होना चाहिए वो शायद ना होकर क्या कहा जाए, जिनको व्यावहारिक ज्ञान नहीं है उनको लगाया गया शायद इन चीजों में, जिनको ये भी नहीं पता होगा कि भूसा कितने रुपए किलो है।
नहीं, ये आत्महीनता का विषय है।
जी जी,
वो जहाँ पर एक मान लीजिए सरकार की यहाँ बहुत सी गौशालाएं बनी है, उनमें ठंड में उनके बचने के बारे में जिसके अंदर कोई विचार ही ना आता हो,
बिल्कुल,
वो उन गौशालाओं के संचालक हैं। तो ये जो आत्महीनता का मसला है ये बहुत बड़ा हो रहा है।
बिल्कुल, और खाली इसी क्षेत्र में नहीं, कई जगहों पर ऐसा है।
जी जी जी,
आप जहाँ पे भी देख लीजिए, जहाँ पर भी इन कामों में असफलता मिलती तो वो यही उसका मुख्य कारण।
हमारी भूख का दायरा इतना बड़ा है कि हमको किसी की दूसरे की भूख दिखती ही नहीं, दर्द भी नहीं दिखता।
ठीक कह रहे हैं
जी,
जब तक हम दूसरे की पीड़ा नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे।
बिल्कुल,
ठीक कहा। अच्छा अखिलेश जी, एक बात अभी मैं सबसे पहले आपसे पूछूं कि आप अखिलेश अवस्थी से अखिलेश भिखारी क्यों बन गए, इसका कोई खास कारण?
अभी अभी असमंजस में लटके हैं।
अच्छा, क्या?
दरअसल भिखारी हमने जब लिखा
जी,
तो हम जैसे हमारे मित्र हैं तो उनसे हमने जबरदस्ती पैसे ले लिए, ये लाओ 5,000 काम है, और बाकी जो परिचित है उससे कहना कि भैया 500 रुपया दो, दिक्कत चल रही
जी।
तो पीछे कुछ चर्चाएं इस तरह की आई कि देखो भिखारी हो गई इसे हुए। तो हमने कहा कि आपकी बात को हम सही कर लें।
पीठ
फिर बच्चों ने प्रश्न किया
जी,
फिर बच्चों ने प्रश्न किया कि जिसका बेटा बैंक में हो और एक बेटा हाई कोर्ट में लायर हो
जी, जी,
उसका पिता भिखारी कैसे हो सकता है? तो हमने कहा बेटा तुम्हारी शादी में हम अवस्थी फिर बन जाएंगे। लेकिन सामाजिक जीवन में हमको ये अच्छा लगता है।
आपने सोचा होगा पीठ पीछे ना लोग कहें। जी,
इस यात्रा में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा।
अच्छा, ये यात्रा तो अभी आपकी चलती रहेगी और हम आपसे और भी बातें जानते रहेंगे, पर आप साहित्य सृजन से भी जुड़े हुए हैं, कुछ अपना सुनाना चाहें तो?
4 पंक्तियां हैं
जी।
यदि बदलनी तुम्हें ये दशा है तब तो प्रतिदान देने पड़ेंगे, देख सम्मान सबको स्वयं तुमको अपमान लेने पड़ेंगे, भागती भीड़ को मत निहारो खुद को देखो कहाँ तुम खड़े हो, ये न जाना तो क्या तुमने जाना, बेवजह मत कहो के बड़े हो, सच में पा जाओगे तुम बड़ाई किंतु बलिदान देने पड़ेंगे, देख सम्मान सबको स्वयं तुमको अपमान लेने पड़ेंगे।
बहुत सही,
ठीक भावना जी?
जी, बहुत अच्छी बात आपने कही सर, बिल्कुल आज के समय के हिसाब से सही है
जी।
और एक बात बताएं अखिलेश जी, कि सारा दिन आपको बेजुबानों से फुर्सत ही नहीं मिलती तो परिवार को आप कैसे समय दे पाते हैं?
परिवार दरअसल क्या कहें कि हमारे प्रेम और दमन दोनों के मिश्रण का आदि हो चुका है
जी,
और वो ये मान चुका है ये ऐसे ही रहेगा, तो उन सबका आप सहयोग मिलने लगा है।
वो भी तो परिवार आपका है
जी जी, जी
उनको लगता होगा कि दूसरे परिवार, मतलब वो भी आप ही का परिवार हो गया दोनों?
नहीं नहीं, जैसे छोटा बेटा है
जी जी,
तो वो तो प्रशंसक और सहयोगी दोनों है, आपसे मिलाने की वजह वही बना।
अच्छा,
जब हम वहाँ किराए वाली जीवाश्रय में काम किया करते थे तो हम ये सब नहीं करते थे
जी जी,
सोशल मीडिया का काम
जी जी,
हम अपने पेज फेसबुक पेज पर लिख देते थे कभी कभी
जी जी।
वो जब आया लॉकडाउन में तो उसने बना बना के डालना शुरू किया इंस्टाग्राम उस पर
जी,
तो आप लोगों से परिचय होने लगा तो हमको भी अच्छा लगने लगा
जी जी।
अब जबकि एक व्यक्ति की जरूरत है जो इस तरह के काम कर सके बता सके, चूंकि हम लोग वो खेत से मेड़ से घास तोड़कर पार्टी पोत कर लिखने वाले लोग हैं
जी,
है ना
जी जी।
तो अब ये मोबाइल की पूरी जानकारी हमको नहीं है।
वही अच्छा था, वही अच्छा था सर, वही समय अच्छा था और वही सब कुछ सही था बिल्कुल
जी जी जी। नहीं, लेकिन अब इस युग में भी जिंदा रहना है ना
जी जी,
क्योंकि अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो खुद को
जिंदा रहना और अपने को जिंदा दिखाना है तो ये सब करना पड़ेगा। एक चीज है अखिलेश जी की कोरोना में बहुत सारी चीजें बुरी हुई और मतलब इतने सारे हमारे अपने लोग हमसे खो गए
जी,
लेकिन कुछ चीज अच्छी भी, हर बात के दो पहलू होते हैं। एक ये बात बहुत अच्छी हुई कि ये सोशल मीडिया और ये डिजिटली बहुत सारे लोग जुड़े एक दूसरे से
जी जी जी,
ये बहुत अच्छी एक बात हुई
जी जी।
जिन लोगों ने नहीं कभी इंटरनेट यूज किया था उन्होंने भी यूज किया और ऐसे आपकी तरह जैसे आप कह रहे हैं
ये सहायक भी हमारे लिए बहुत बना, जैसे तमाम अपंग मानसिक विकृत लोग मिल जाते हैं, हम उनको ले आते हैं तो फिर उनकी जब खोजबीन शुरू करते हैं तो सोशल मीडिया ही उनके परिजनों से मिलाता है।
हाँ, देखिए कितना अच्छा ये होता है बात इसकी
जी जी।
और हमसे भी ये आप मिले इसके द्वारा तो आपकी बात बहुत सारे लोगों तक जाएगी तो कई लोग
जीवाश्रय ने कम से कम 10-12 लोगों को इस तरह के रख कर
जी जी
और इस माध्यम का प्रयोग करके
जी
उनके परिजनों को मिलाया।
अच्छा, प्रेरणा मिलती है ऐसे कार्य जब हम किसी के देखते हैं तो आगे से हमको भी करने का।
बिल्कुल बिल्कुल
जी। और आज आपके साथ मुस्लिम भी जुड़ रहे हैं इस कार्य में, तो कैसा लगता है आपको अपनी मेहनत का ये प्रतिफल देखकर?
मुस्लिम दरअसल हम कहते हैं ना कि हम मूल से भटक गए
जी जी।
जो विकृत मानसिकताएं हैं वो आज नहीं बहुत पहले से हैं
जी।
अशफाक उल्ला खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल
जी,
ये दोनों लोग यहाँ से 200 किलोमीटर शाहजहांपुर के हैं।
हाँ हाँ बिल्कुल।
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के इंकलाबी स्वभाव से प्रभावित अशफाक उल्ला खान उनसे मिले और मिलने के बाद ऐसी दोस्ती हुई जो आज दुनिया में पूरा ख्याति प्राप्त है
जी बिल्कुल।
तो हमको अशफाक उल्ला खान ढूंढने में क्या दिक्कत है
जी?
हम सार्वजनिक गाली क्यों दें?
ठीक कह रहे,
बस ये दिक्कत है
जी जी।
तो हम जब इस भाव पर चलते हैं
जी जी,
तो हमारे यहाँ एक मुसलमान है शकील भाई, नजम भाई
जी जी।
तो नजम भाई हमको अपने पेट्रोल पंप से 10 लीटर पेट्रोल महीने में देने लगते हैं इस सेवा के लिए
जी।
और एक ऐसा आयोजन कराते हैं जिसमें हम सुंदर कांड पढ़ते हैं वो हमारे साथ बैठ के, और हम उनके साथ उनकी कथा पढ़ते हैं टोपी लगा के। ये आयोजन होता है और इसको हिंदुस्तान टाइम्स छापता भी है पहले पन्ने पर।
बताइए जी। और जहाँ गोवंश की बात आती है तो वहाँ तुरंत मतलब धार्मिक उन्माद फैलाने की बात हो जाती है, और ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं ये कितनी
ये मुसलमान गाय काट डालता है ये बेकार की बात है
जी जी।
किसी मुसलमान की छाती में इतने बाल नहीं है कि हमारे दरवाजे बंदी गाय खोल कर काट डाले
जी।
दोष हमारा है कि हम छोड़ देते हैं कि इसको जो मन हो करो, हमसे कोई मतलब नहीं।
बिल्कुल ठीक।
ये उसकी गति बताती है, ये उसकी दुर्गति बताती है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। हम कथित रूप से माँ कहते हैं।
बिल्कुल ठीक कहा आपने।
हम अपनी रसोई में अग्रासन बनाते हैं लेकिन दरवाजे बैठी गाय के ऊपर रात में ठंडा पानी भी फेंक देते हैं
जी। ठीक कह रहे हैं
जी।
मन से नहीं हम उसको पूछ पाते, खाली
बिल्कुल
दिखाने के लिए पूजा करते हैं। और कुछ अपनी
और बहुत बहुत ये आश्चर्यजनक बात भी नहीं है
जी जी।
जिस देश में माता पिता के रखने के वृद्धाश्रम बन गए हों,
ठीक कह रहे हैं सर,
वहाँ ये बहुत बड़ी बात नहीं है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
जी जी।
गंगा को माता कहकर हम पूजते हैं और वहाँ पे कचरा फेंकने में थोड़ा भी संकोच नहीं करते
जी जी जी।
हर जगह पर यही चीज है और हाँ। माता पिता को। ठीक, आपने कहा वृद्धाश्रम होने का मतलब यह है कि हम माता पिता
को, इसे कोई सरकार नहीं बदल सकती।
नहीं बदल सकती
जी,
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अपनी कोई रचना सुनाए सर।
और सुना दें। हमने इस राह पर चलते चलते कहा कि उनसे सीखो जो इस जहां में कोई मिसाल बने, उनसे सीखो जो इस जहां में कोई मिसाल बने, आओ हम तुम यहां जलती हुई मशाल बने, आओ हम तुम यहां जलती हुई मशाल बने। हर आदमी के अंदर एक सुलगन होती है
जी,
उस सुलगन को महसूस कर लेने वाले बहुत कम लोग होते हैं।
बिल्कुल।
यूं ही सुलगे रहे तो बात बिगड़ जाएगी, ये जो सुलगन है किसी मोड़ पे बुत जाएगी, भूख से तड़पे लड़े वो ही बेमिसाल बने, आओ हम तुम यहां जलती हुई मशाल बने। फिर कहते हैं कि क्या किया जाए भाई, कैसे किया जाए, बहुत बड़ा काम, क्या करें कैसे करें, ये तो एक बहाना है, ऐसे हालात हैं कि खुद को अब जलाना है, जल के हम रोशनी दें तब तो कुछ कमाल बने, आओ हम तुम यहां जलती हुई मशाल बने। फिर आदमी कहता है
जी,
कि भावना जी की गलती थी इसलिए नहीं ये हो पाया।
जी जी।
किसी के दोष गिना कर कहां भला होगा, अब तो तैयार हो कि सिर्फ जल जला होगा, काल क्या होता है हम खुद ही महाकाल बने, आओ हम तुम यहां जलती हुई मशाल बने। भावना जी
बहुत सुंदर सर, वाकई भाग्य के भरोसे छोड़कर नहीं बैठ जाना चाहिए।
जी जी जी,
हमको बिल्कुल अपने कर्म करते रहना चाहिए।
बिल्कुल।
और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? बहुत अच्छा लग रहा आपसे बात करके।
आप सब लोग इस यात्रा को संबल देते रहिए, बस यही प्रार्थना है।
जी सर, आपने आप इतना व्यस्त रहते हैं, मुझे आपके बारे में यही पता लगा कि उतनी देर ही आपसे बात हो सकती है जितनी देर कोई आपका छोटा सा प्यारा सा कोई सदस्य घायल अवस्था में मान के आ जाए।
ऐसा नहीं है, हम लापरवाह भी बहुत हैं।
नहीं, अगर आप लापरवाह होते तो इतने लोगों की देखभाल ना कर पा रहे होते, और आप उसी कार्य में लगे रहे, हम बस यही चाहेंगे। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके।
एक हमारे यहाँ के बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, रजनीश जी।
जी जी।
उनकी दो पंक्तियां हैं।
जी सुनाए सर।
कि आज मुझे विष पी लेने दो और किसी दिन सुधा पिएंगे, तुम जितना जी चाहे जी लो, हम मरने के बाद जिएंगे।
वाह,
इन पंक्तियों को छूने की कोशिश कर रहा हूँ।
बहुत बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर आप। और हम सबको अपने पर गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ प्रकृति के कण कण को पूजा जाता है।
जी जी।
और बेजुबान पशु पक्षियों से भी हम कोई ना कोई रिश्ता बड़ी आसानी से बना।
हमारा धर्म तो सुअर में देवता देखता
जी,
है।
जी बिल्कुल। बिल्ली में मौसी देख लेते हैं, बंदर में मामा देख लेते हैं, हर पशु पक्षी से हम अपना एक रिश्ता जोड़ लेते हैं।
हमें अपने धर्म पर गर्व है।
जी बिल्कुल सर।
लेकिन धर्मावलंबी हूँ इस पर भी गर्व होना।
बिल्कुल, आप जैसे लोग इसकी मिसाल हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपका बहुत बहुत आभार। और जब भी आपको ऐसे अपने समय ऐसे मिलता रहे, चुभन पर आपका स्वागत रहेगा हमेशा ही, हम आपको सुनना चाहेंगे।
बार बार प्रणाम आपको।
नमस्कार सर।